उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये भारत के 8 राज्यों का वो समागम है जिसे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ये राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधता और अनूठी कलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन राज्यों में बसी संस्कृति और कला की भव्यता वास्तव में एक गुलदस्ते की तरह है, जहाँ ये राज्य अपनी विशेषताओं के रंगों और सुगंध के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं। हमारे कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी भी इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम आपको इन राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर, कला और उनके विकास से अवगत कराएं। हम हर रविवार आपसे मिलते हैं और हम हर रविवार आपको इस अद्भुत क्षेत्र की सैर कराते हैं और इन राज्यों के बारे में आपके साथ कुछ साझा करते हैं। आज के अंक में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं कमल प्रजापति। आज भी बहुत कुछ विशेष लेकर हम आपके बीच आए हैं। तो सबसे पहले हम पूर्वोत्तर डायरी का मुख्य पृष्ठ खोलते हैं और आज के पृष्ठ में आपके लिए है अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति और कला के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। इस राज्य को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन और सांस्कृतिक विविधता इसे एक अनोखी पहचान देती है। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति में विभिन्न जनजातियों की परंपराएं, रीति रिवाज और कला शामिल हैं, जो इसे और भी अनोखा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 26 जनजातियां और 100 से ज्यादा उप जनजातियां निवास करती हैं। यहां की प्रमुख जनजातियों में न्याशी, अवतानी, मिश्मी, गालो आदि और मोनपा शामिल हैं। हर जनजाति के अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। जनजाति लोग अपनी संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं और इसे अगली पीढ़ियों तक सहेज कर रखने का प्रयास करते हैं। इन जनजातियों की जीवन शैली मुख्यतः प्रकृति पर आधारित होती है और उनके धार्मिक विश्वास भी प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। इस राज्य के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। यहाँ के लोग सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे और पहाड़, नदियों की पूजा करते हैं। प्रमुख धार्मिक मान्यताओं में डोनी पोलो और आन नामक मान्यताएं शामिल हैं। डोनी पोलो सूर्य और चंद्रमा की पूजा से जुड़े हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के अवतानी और न्याशी जनजातियों के बीच लोकप्रिय है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के अनुयायी भी रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य और संगीत यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। हर जनजाति का अपना विशिष्ट नृत्य है, जो आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों और विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। बुघन और पोपिर जैसे नृत्य अवतानी जनजाति के बहुत प्रसिद्ध नृत्य हैं। याक नृत्य मोनपा जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। इसमें लोग याक के वेश में नृत्य करते हैं। ये नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि धार्मिक विश्वासों का भी प्रतीक है। अरुणाचल प्रदेश के कलाकार पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र जैसे ढोल, डपांग, जंग और फिन पाइप का ऐसे अवसरों पर प्रदर्शन करते हैं, जिनसे उनके नृत्यों की प्रस्तुति और भी जीवंत हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश की हस्तकला और शिल्पकला भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग बांस, लकड़ी और बेंत का उपयोग कर विभिन्न वस्तुएं बनाते हैं। इनमें टोकरियां, चटाई, टोपी और सजावट के सामान शामिल हैं। मोनपा जनजाति की काष्ठ कला बहुत प्रसिद्ध है। इसमें वे लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करते हैं। इसके अलावा मिश्मी जनजाति के बनाए हुए पारंपरिक आभूषण और वस्त्रों की भी अपनी पहचान है। इनके कपड़ों में प्रमुख रूप से हाथ के बनाए हुए डिजाइन शामिल होते हैं, जिन पर रंग बिरंगे डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और ये एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी है। इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये मठ लामा मठों की परंपरा का हिस्सा है। यहाँ हर साल कई बौद्ध कार्यक्रम होते हैं, जिनमें न केवल स्थानीय लोग बल्कि कई पर्यटक भी भाग लेते हैं। ये मठ अरुणाचल प्रदेश की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। अगर उत्सव और त्योहारों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जो यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार लोसार है, जो बौद्ध नववर्ष का प्रतीक है। मोनपा और शेरदुकपेन जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला ये त्योहार एक सप्ताह तक चलता है, जिसमें लोग प्रार्थना करते हैं, नृत्य करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा न्योकुम मोपिन और सोलुंग जैसे त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में कृषि और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट किया जाता है, क्योंकि कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इस राज्य का पहनावा और आभूषण यहाँ की संस्कृति की खास पहचान है। हर जनजाति का अपना अलग पहनावा है, जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है। मोनपा जनजाति की महिलाएं शामा नामक एक विशेष परिधान पहनती हैं। अवतानी जनजाति की महिलाएं अपनी नाक में एक विशेष प्रकार का आभूषण पहनती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। इसी तरह से यहाँ की विभिन्न जनजातियों की परंपराएं, नृत्य कला और धार्मिक मान्यताएं इस राज्य को भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर विशेष स्थान देती है। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा अगरतला। बीते बुधवार को अगरतला में एक भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन में त्रिपुरा के युवा अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और इन अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 2800 के करीब थी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मिलित हुए और साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह सहित कैबिनेट के अन्य मंत्री सदस्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर ये संदेश दिया गया कि त्रिपुरा में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा भी कि सरकार द्वारा बड़ी संख्या में पारदर्शिता के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। तो आइए हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे से ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
बुधवार को अगरतला में नए नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने विभिन्न विभागों के 2800 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम का आयोजन अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में किया गया, जहां हाल ही में भर्ती परीक्षा पास करने वाले 2806 अभ्यर्थियों को त्रिपुरा सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। एक अधिकारी के अनुसार इनमें से 2400 उम्मीदवार वे हैं जो 2021 में त्रिपुरा संयुक्त भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से चयनित किए गए थे। अन्य चयनित अभ्यर्थियों में स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला टेक्नीशियंस और विभिन्न विभागों के बहु कार्यकारी कर्मचारी शामिल है। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह, उनके 10 कैबिनेट मंत्री और मुख्य सचिव जेके सिन्हा उपस्थित रहे और उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्तमान सरकार में केवल योग्य अभ्यर्थियों को ही नौकरियां दी जाती है। उन्होंने कहा कि 2806 अभ्यर्थियों जिन्हें नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, वे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित त्रिपुरा और विकसित भारत अभियान का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही है, न किसी प्रकार की सिफारिश या प्रभाव से।
किसी भी प्रकार के भेदभाव के बगैर पारदर्शिता से, किसी के भ्रष्टाचार के बगैर, सिफारिश के बगैर त्रिपुरा के 2806 युवाओं को आज सरकारी नौकरी देकर उनके जीवन में एक नई शुरुआत करने का और त्रिपुरा के विकास के साथ जोड़ने का मौका दिया है। एक प्रकार से आज से नई शुरुआत और आज से ही ये नियुक्ति पत्र प्राप्त होते ही आप मोदी जी के विकसित त्रिपुरा विकसित भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह ने कहा कि राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र PRTC अनिवार्य होगा। उन्होंने ये भी बताया कि त्रिपुरा संयुक्त भर्ती बोर्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा TET और त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नौकरियां दी गई है।
सबके सामने जिस तरह हम लोग ये ऑफर दिए इससे एक माहौल बना पूरा त्रिपुरा में और मैं समझता हूँ आने वाले दिन जिस तरह हम ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग जॉब दे रहे हैं वो बरकरार रहेंगे और आने वाले दिन भी इस तरह और भी हम लोग जॉब क्रिएट करेंगे।
आकाशवाणी समाचार ने कुछ अभ्यर्थियों से भी बातचीत की जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे गए। उन्होंने अपनी खुशी इस तरह जाहिर की।
और मुझे RD डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट मिला और बहुत अच्छा लग रहा है और मैं त्रिपुरा सरकार का दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यह इतना फेयर और ट्रांसपेरेंट वे से इतना बड़ा जो नौकरी का नौकरी दिया है इसलिए
मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ऑफर पाया हूँ, ऑफर लिया हूँ जो सच्चा नियुक्त नीति के माध्यम से हमको जो चयनित किया गया है वो अच्छा मतलब अच्छा सिस्टम है।
वर्तमान सरकार है वो सच्चा नियुक्त नीति कर रहे हैं और 100% ही कर रहे हैं सच नियुक्त नीति। और जो अभी तक मैंने जहाँ देखा जो 2018 से साल से वो मैंने सच नियुक्त नीति ही चल रहा है।
कुणाल शिंदे पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी अगरतला से।
अरुणाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा जमीनी स्तर पर उतारने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राज्य सरकार ने राज्य भर में मेगा सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है और इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने क्षय रोग यानी TB को खत्म करने को लेकर एक विशेष अभियान भी शुरू किया है और ये अभियान 100 दिनों तक चलेगा। तो TB उन्मूलन को लेकर केंद्र सरकार पहले ही देश भर में अभियान संचालित कर रही है और राज्य सरकार के इस विशेष अभियान से अरुणाचल प्रदेश में TB के उन्मूलन में जरूर सहायता मिलेगी। तो स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के इन कार्यक्रमों को लेकर आइए हम एक रिपोर्ट सुनते हैं और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता राकेश डोले।
TB एक बैक्टीरियल बीमारी है जो फेफड़ों को प्रभावित करती है और भारत में एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। भारत में TB का सबसे अधिक बोझ है जहां नए मामलों और मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूरे देश में TB के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसका पता लगाने के लिए विभिन्न अभियान शुरू किए हैं। अरुणाचल प्रदेश में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बियूराम वाघे ने इस सप्ताह पापुमपारे जिले के दोईमुख जिला अस्पताल परिसर में इंटीग्रेटेड मेगा मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप और 100 डे इंटेंसिफाइड TB इलिमिनेशन कैंपेन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री वाघे ने कहा कि राज्य सरकार जनता के कल्याण को लेकर बहुत ही गंभीर है। उन्होंने बताया कि ऐसे शिविर राज्य के हर जिले में आयोजित किए जाएंगे जिससे उन लोगों को लाभ मिलेगा जो अस्पतालों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
सबसे पहले तो मैं यहाँ का लोकल MLA को और यहाँ का DMO जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज यहाँ में एक मेगा हेल्थ कैंप लोग करने जा रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी हम लोगों का ऑनरेबल लोग जो MLA लोग है सभी लोग करने जा रहे हैं ये सब चीज़ को। अच्छा है ये पब्लिक के लिए जो सुविधा कुछ लोग जहाँ में हॉस्पिटल नहीं आ पाते हैं उन लोगों के लिए ये ओपन जगह में उनको सुविधा दे रहे हो तो इसका फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए पब्लिक। डॉक्टर का कमियां है मैं हमेशा बोलता हूँ और आप लोग भी जानते हैं कमियां होने के बावजूद भी जो डॉक्टर लोग सेवा कर रहे हैं उसको हम लोग सराहना करना चाहिए और हम लोग उसका जो अब इस तरह का जो मेगा हेल्थ कैंप कर रहा है छोटा हो बड़ा हो जो भी हेल्थ कैंप कर रहा है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा तरफ से सभी अरुणाचल वासियों को यही गुजारिश करूँगा कि मैं इसका फ़ायदा जरूर होता है ताकि वो अपना हॉस्पिटल में अगर दूर दराज है तो गाड़ी नहीं है नहीं पहुंच सकता है तो वो इसका फायदा जरूर उठाए।
इस पहल से राज्य के दूर दराज और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, जिसे अरुणाचल प्रदेश में टीबी उन्मूलन और समग्र स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा वो हिस्सा है जहाँ पर जनजातियाँ बहुतायत में हैं और इन जनजातियों की बहुलता ही यहाँ की संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और पूर्वोत्तर भारत के ये 8 राज्य विभिन्न जनजातियों का जो संगम प्रस्तुत करते हैं वही इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। तो आज हम विशेष रिपोर्ट सुनवा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में कौन कौन सी खास जनजातियाँ बसती हैं, वहाँ की इन जनजातियों की क्या परंपराएं हैं, क्या रीति रिवाज हैं और उनका रहन सहन कैसा है और किस तरह से इन जनजातियों का भारतीय संस्कृति में महत्व है। साथ ही हम इस रिपोर्ट में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन जनजातियों के उत्थान के लिए, जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए और इनकी विविधतापूर्ण संस्कृति का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम में ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय विविधता पूरे देश में अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं के कारण विशेष स्थान रखती है। ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे 8 राज्यों से मिलकर बना है। यहाँ 200 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान, रीति रिवाज और लोक कथाएं हैं। ये क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, जीवंत उत्सवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक संरचना इसे और भी विशेष बनाती है। यहाँ घने जंगल, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ और नदियाँ हैं जो इन जनजातियों की जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। अधिकतर जनजातियाँ पहाड़ी और जंगलों से जुड़े इलाकों में रहती हैं, जहाँ उनकी परंपरागत जीवन शैली कृषि, बागवानी, पशुपालन और शिकार पर निर्भर करती है। इन जनजातियों का इतिहास सदियों पुराना है और उनके सामाजिक ताने बाने में प्रकृति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जनजातियां रहती हैं, जिनमें आदि, नीशी, अपतानी, टैगिन, मोनपा, वांचो और मिसमी प्रमुख हैं। अपतानी समुदाय अपनी अनूठी कृषि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बिना बैलों के खेतों में धान की खेती की जाती है। मोनपा समुदाय का संबंध तिब्बती संस्कृति से है और इनका मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। इसी तरह वांचो और टैगिन जनजातियां अपने पारंपरिक वस्त्र, आभूषण और लोक कथाओं के लिए जानी जाती हैं। सुरों का बंधन है अरुणाचल, चैनो अमन का एक दर्पण अरुणाचल। असम की जनजातीय संरचना भी अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ बोडो, मिसिंग, देवरी, कार्बी, तिवा और सोनवाल कछारी जैसी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। बोडो समुदाय असम के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है और इनकी भाषा, नृत्य और संगीत इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। मिसिंग जनजाति ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ बसती है, जहां उनके बांस के बने मकान और परंपरागत हथकरघा उद्योग प्रसिद्ध है। मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया समुदायों की परंपराएं विशेष रूप से ध्यान खींचती हैं। खासी जनजाति मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का पालन करती है, जहां संपत्ति और वंश परंपरा मातृपक्ष से चलती है। खासी समाज में महिलाएं पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गारो जनजाति अपने अनूठे पारंपरिक पहनावे, संगीत और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। जयंतिया समुदाय खनन और कृषि से जुड़े हैं और इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं भी मात्र सत्तात्मक स्वरूप की हैं।
কাকতে বহুবায়ে মনা মিথা মিথা সেনে সুমাজাসি মে রাতি দুপরলে।
মণিপুর মে রহনে ওয়ালি প্রমুখ জনজাতিয়াঁ হ্যায় মেটি, নাগা অর কুকি। মেটি সমুদায় কি সাংস্কৃতিক পরম্পরায়ে নৃত্য অর সঙ্গীত দেশ ভর মে লোকপ্রিয় হ্যায়। ये समुदाय अपनी विशिष्ट मार्शल आर्ट थांगता और पारंपरिक नृत्य रास लीला के लिए प्रसिद्ध है। नागा और कुकी जनजातियाँ पहाड़ी इलाकों में निवास करती हैं और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन और हथकरघा उद्योग है। मिजोरम की जनजातीय संरचना भी अद्वितीय है। यहाँ लुशी, रालते, हमार, पाइते और पाविस जैसे समुदाय निवास करते हैं। लुशी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है जो यहाँ की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जनजातियों की पारंपरिक पोशाकें, संगीत और नृत्य बेहद प्रसिद्ध है। नागालैंड में नागा समुदाय की कई उपजातियां हैं जिनमें अंगामी, एओ, सेमा, चांग, फोम और जेलियांग प्रमुख हैं। नागा जनजातियां अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती हैं। इनका पारंपरिक आभूषण और पोशाक इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। यहां के हॉर्नबिल महोत्सव में नागा जनजातियों की रंग बिरंगी परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुँचते हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरी, रियांग, चकमा और हलम समुदाय रहते हैं। त्रिपुरी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है जिनकी सांस्कृतिक पहचान उनके पारंपरिक नृत्य और संगीत से होती है। चकमा जनजाति बौद्ध धर्म को मानने वाली प्रमुख जनजाति है जो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में निवास करती है। रियांग समुदाय की जीवन शैली जंगलों और पहाड़ियों से गहराई से जुड़ी हुई है। सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेपचा समुदाय प्रमुख हैं। लेपचा जनजाति को सिक्किम का मूल निवासी माना जाता है जो प्रकृति पूजा में विश्वास रखते हैं। भूटिया समुदाय तिब्बती संस्कृति से प्रभावित है और इनका पारंपरिक पहनावा और भोजन तिब्बती शैली का होता है। पूर्वोत्तर भारत की जनजातियाँ अपनी भाषाई विविधता के लिए भी जानी जाती हैं। यहाँ की अनेक जनजातियाँ अपनी विशिष्ट भाषाएं और बोलियाँ बोलती हैं, जिनमें से कुछ लिखित रूप में संरक्षित हैं, जबकि कई बोलियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाएं इन भाषाओं को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत हैं ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सकें। इन जनजातियों की पारंपरिक आजीविका कृषि, बांस कला, हथकरघा उद्योग और वन संसाधनों पर निर्भर करती है। कई समुदाय झूम कृषि प्रणाली अपनाते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। हालांकि आधुनिक समय में जनजातीय समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ने के कारण कई युवा अब शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों के विकास और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन जैसी योजनाएं विशेष रूप से जनजातीय समुदायों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। साथ ही आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए विशेष आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति और स्वरोजगार योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।
एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
फूल के खिल खिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। फूल के खिल खिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।